मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 27 जून 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस बीच अगर हम डेली ऑडियो लेक्चर की बात करें तो आपको 3 दिनों का एक लंबा गैप मिला है। हालांकि कल कुछ प्रेस क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की गई थी पढ़ने की, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम थी कि मैं उसे गैप ही मानकर चल रहा हूं। मुझे यकीन है कि 3 दिनों के इन छुट्टियों ने आपको तरोताजा कर दिया होगा। वैसे भी मौसम भी कुछ इस तरह का है जो आपको तरोताजा करता रहेगा। और फिर जो ईद का त्यौहार है, वो जिस तरह के हर्षोल्लास और मिलन का त्यौहार है, उसने तो आपके मुरझाए हुए पौधे में जरूर बाल्टी भर पानी उड़ेल देने का काम किया होगा। यानी कि आप पूरे उत्साह और गर्मजोशी के साथ अब आगे आने वाले दिनों का स्वागत करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं न्यूज पर बात करूं, आज आपको अपना मुख्य विषय बताता हूं जो काफी समय से चल रहा है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में हमने बातें की हैं और मैं देख रहा हूं कि उसमें डिस्टर्बेंस भी काफी हो रहे हैं। तो आज मैं ज्यादातर वक्त जिस विषय की तैयारी के बारे में हम पहले से बात कर रहे हैं उसी को देना चाहूंगा, और वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय की तैयारी। आज मैं पूरी तरीके से इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमारे पास न्यूज के तहत बात करने के लिए विशेष कुछ है नहीं, राइट फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको न्यूज की केवल 2 पॉइंट न्यूज के बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी 3 देशों की यात्रा पर हैं, और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण यात्रा है वह है अमेरिका की यात्रा। राष्ट्रपति वहां के अभी ट्रंप बनने के बाद प्रधानमंत्री की हमारी ये पहली यात्रा है, और ट्रंप के आने के बाद आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया थोड़ी सी पशुपेश में पड़ गई है। वो जिस तरह के वो वक्तव्य दे रहे हैं, जिस तरह की नीतियों का वो बता रहे हैं, उसको लेकर के दुनिया समझ ही नहीं पा रही कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है, वो चाहते क्या है। तो नो डाउट कि भारत भी थोड़ा सा उसको लेकर के एक चिंतित सा तो है, परेशान सा ये कि मतलब वो कुछ निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। तो बट नेचुरल है कि अब भारत के प्रधानमंत्री गए हैं तो ये जो धुंध जो छाई हुई है ये डेफिनेटली छटेगी। इस पर हम अभी कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। कल रात में हमारे प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, उनकी बातें भी अभी अखबारों में नहीं आई हैं क्योंकि वहां जो मुलाकात का समय था वो हमारे टाइम के हिसाब से 1:20 का था, और लगभग 4 घंटे तक राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी साथ साथ व्हाइट हाउस में रहे हैं। कल के अखबारों में इसकी चर्चा होगी और आज के न्यूज में भी ये बातें आएंगी, तो हम थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करते हैं और जब पूरी तरह से चीजें सामने आ जाएंगी तब हम इस पर बात करेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री जी के पुर्तगाल यात्रा का संबंध है मित्रों, में आज आपको राष्ट्रीय सहारा की एक क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं जो एडिटोरियल कमेंट के रूप में है, आप उसे देख लीजिएगा और बस उतना ही पर्याप्त है। आप ज्यादा चिंतित मत होइए कि ये भी जानना चाहिए, उतना ही आपको सफिशियंट होगा। सच पूछे तो पूछा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो भी इस तरह के महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं और खासकर जिनका संबंध भारत से है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना बेहतर होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक सामान्य सा परिचय उससे हो जाए तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कल के रेडियो न्यूज में जो एक इम्पॉर्टेंट खबर थी, छोटी सी खबर है, अपने आप में मतलब कंप्लीट टॉपिक नहीं है, एक कंपोनेंट के रूप में जब भी आप कभी बात करेंगे कि जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट संस्था है हमारे देश की। उसको अब जो निजी बैंक हैं, निजी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच करने के अधिकार दे दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका संबंध बेसिकली सच पूछे तो गवर्नमेंट सर्वेंट से ही है। पीएसयू भी, पब्लिक सेक्टर यूनिट भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये सब, तो ये तो आते ही थे, लेकिन निजी बैंक नहीं आते थे। तो निजी बैंकों के जो भ्रष्टाचार के आरोप होंगे, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप होंगे, उनकी भी जांच का अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयोग को दे दिया गया है। एक बड़ी घटना है, एक बड़ी बात ये है जो आपके दिमाग में रेखांकित होनी चाहिए, मौजूद रहनी चाहिए। जब आप सोचेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या क्या सरकार कर रही है, तो उसमें एक पॉइंट ये आ जाएगा कि अब वो निजी बैंकों तक पहुंच रही है। और देखिए, इसके पीछे कारण यही है कि जो निजी बैंक भी हैं वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, आफ्टरऑल पब्लिक का पैसा वहां है, पब्लिक का पैसा है, वो कोई निजी व्यक्ति जो मालिक है उसी का पैसा नहीं है, उसने पब्लिक का पैसा लिया हुआ है, तो पब्लिक का जो धन है वो प्रोटेक्ट हो, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की होती है। तो मित्रों, एक छोटी सी सूचना भर है, दैट्स ऑल। अब मैं मित्रों आता हूं आज के सीधे सीधे विषय पर। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बीच में जो मुझे मेल मिले हैं उसमें अभी जो प्री एग्जाम हुआ है उसके कट ऑफ मार्क्स को लेकर के कुछ बातें लिखी गई हैं, और मुझे लगा कि स्टूडेंट इसको लेकर के द्वंद में है, और द्वंद में होना स्वाभाविक इसलिए भी है कि आप यूट्यूब पर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप संस्थानों में जा रहे होंगे, लेक्चर सुन रहे होंगे, तो सब देखिए अपने अपने अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, तो ऐसे में एक भ्रम की स्थिति होती ही है। इसके बारे में मैं एक दो दिन में ही एक अलग से आपको डिटेल में कुछ न कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं समय जो मेरे पास है उसका इस्तेमाल मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय की तैयारी के बारे में ही करना चाहूंगा। तो आइए मित्रों, हम लोग के पास 10 मिनट का समय है और जो पर्याप्त है। मैं पिछले कुछ एपिसोड में बीच बीच में अपने इसी डेली ऑडियो लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तैयारी के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने जिन जिन पॉइंट्स की चर्चा की है मैं थोड़ा सा इशारे से बता दूं, डेफिनेटली मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाने के लिए मेरे पास दूसरे पॉइंट्स हैं। मित्रों, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, सिलेबस। और अगर आप सिलेबस की इंपॉर्टेंस को जानना चाह रहे हैं तो YouTube पर जो 11 पिलर्स की मैंने बात की है उस 11 पिलर्स में से एक पिलर्स सिलेबस को लेकर के है, तो प्लीज आप उसे देख लें। और साथ ही साथ जो इसको लेकर अनसॉल्व्ड पेपर हैं, और प्लीज कम से कम 5 साल के अनसॉल्व्ड पेपर तो आप जरूर देखें। मेंस के अनसॉल्व्ड पेपर 2013 से सफिशियंट है, 2013 से लेकर के और 16 तक के आपके पास अवेलेबल है, 17 अभी कुछ समय के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये पेपर्स आप अनसॉल्व्ड देखें और जानने की कोशिश करें कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं मित्रों, कि जिन स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा है उनको इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा कठिन मालूम पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप कोई लिबर्टी नहीं ले सकते, मतलब आप छोड़ नहीं सकते। वैसे छोड़ेंगे भी तो किस किस चीज को छोड़ेंगे बताइए, छोड़ना तो हल नहीं होता है, उससे जूझना ही हल होता है। और इसको आप इसलिए भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि प्री और मेंस दोनों में इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं अगर प्री के 2 साल की केवल बात करूं तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि 2016 में प्री में जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी जो संख्या है फ्रेंड्स वो 16 है, 100 में 16, और इस बार जो मैंने अपने ढंग से कैलकुलेट किया है उसमें है 11, यानी कि मोर देन 10% क्वेश्चंस हर साल इंटरनेशनल रिलेशन से प्री में आ रहे हैं। तो आप कैसे छोड़ सकते हैं? और चलिए प्री में आप छोड़ भी देंगे, लेकिन छोड़ देने का मतलब है कि 10% आपके खत्म हो गया, दूसरे बीच क्वेश्चन छूटते हैं, तो ये रिस्क लेने के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा। और दूसरा है, जब हम मेंस में आते हैं, सेकेंड पेपर में आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 में तो 80 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे गए, 80 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे गए, सोच करके देखिए। 2014 में इससे 62.5 नंबर के पूछे गए, 15 में 50 नंबर के पूछे गए, फिर 2016 में 50 नंबर के पूछे गए। मैं ये मान करके चलता हूं कि 250 में से 50 नंबर से कम प्रश्न तो इस पर पूछे जाएंगे ही नहीं। कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है जब 4 क्वेश्चन न पूछे गए हो, 20 में अगर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। तो मित्रों, ये छोड़ तो आप सकते ही नहीं, इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़े से सिस्टमेटिक तरीके से एक बेसिक प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। देखिए, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, दो सीधे सीधे आधार है और दोनों समानांतर हैं। इसमें से आप किसी को कम और किसी को अधिक मत समझिएगा, दोनों समानांतर है। एक जो रेल की पटरी होती है वो है आपके सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी, और दूसरी है उसका करंट अफेयर। ये दो पटरियां हैं, एक पटरी पर रेल नहीं चल सकती। मित्रों, अगर आपको लग रहा होगा कि आप जो करंट अफेयर्स के दम पर ही चीजों को कर लेंगे और क्वेश्चंस के आंसर लिख करके आ जाएंगे, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, तो मैं समझ रहा हूं कि आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा कतई संभव नहीं होगा। जब तक आपके पास बेसिक्स नहीं होंगे, आप इन्हें समझ ही नहीं सकते, और अगर समझ भी जाएंगे, रट भी लेंगे, तो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आप करके देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ना। आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर है, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो चीज आपको सही सूट नहीं करती है, सही गलत की बात नहीं है, जो चीज आपको सूट नहीं करती है उसे आप गलत ठहराने में देरी नहीं लगाते हैं। जो चीज सूट करती है उसे सुनकर के आप खुश हो जाते हैं और तारीफ भी करने लगते हैं, वह क्या बात बताई है सर ने। लेकिन सवाल आपके सूट करने और न करने का नहीं है, सवाल यह है कि सही क्या है। तो आपको पैरेलल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मित्रों, जो सेकेंड, जो दूसरी पटरी है, जो करंट अफेयर्स है, उसकी तैयारी तो आपकी अखबारों से, मैगजीन से, न्यूज से होती रहेगी। जैसा कि मैंने अभी कहा, थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो अमेरिका की यात्रा है, इस पर हम बातें करेंगे, तो ये करंट अफेयर्स है। लेकिन अमेरिका से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जब इसकी समीक्षा आपको करनी होगी, तो जब तक आपके पास भारत और अमेरिका के संबंधों की पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कैसे एक ब्रिलियंट जो समीक्षा होती है, जो आपको सिविल सर्विस में नंबर दिला सके, वो कैसे कर सकते हैं। और याद रखिए कि मैं अगर भारत और अमेरिका के संबंधों की एक सामान्य जो पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी जानकारी है, सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे घर की देखिए, दादी नानी को देखिए, मां को देखिए, हेल्थ की सामान्य सी जानकारी होती है कि नहीं, कि वो छोटे से बच्चे को पाल पोस लेते हैं, तो उतनी सामान्य सी जानकारी तो हो बस। हम एक्सपर्ट नहीं है, एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन एक सामान्य सी जानकारी की अपेक्षा तो हमसे की ही जाती है। तो मित्रों, उसके तहत मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको क्या सामान्य जानकारियां या बेसिक जानकारियां इंटरनेशनल रिलेशंस की रखनी हैं। अब उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए, कुछ की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन यहां मैं उन्हें फिर से शामिल कर रहा हूं। नंबर वन, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत की जो विदेश नीति है, उसके मुख्य स्तंभ क्या है, यानी कि मुख्य बिंदु क्या है। और इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि भारत की विदेश नीति एक ऐसी नीति है जो आजादी के बाद से लेकर अभी तक कंटिन्यू कर रही है, जो मूलभूत तत्व हैं उनमें बदलाव नहीं आए हैं। और दोस्तों, मुख्य तत्व जानने के साथ ही साथ आपको भारत की विदेश नीति का एक इतिहास, शुरू से लेकर के अब तक का, एक थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कब कब क्या क्या बदलाव आए, यानी कि जो टर्निंग पॉइंट है उन पर खासकर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, बस दैट्स ऑल, उतना ही सफिशियंट होगा। आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपके दिमाग में एक एहसास सा हो जाए कि हाँ, हमारी यह विदेश नीति है। इसके बाद दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको दुनिया के इतिहास को, विदेश नीति के इतिहास को भी देखना होगा। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, इसको आप दो भागों में बांट दीजिए, 1945 से लेकर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर के 1990 तक की दुनिया कैसी रही है, और इसके बाद 1990 के बाद से लेकर के अब तक की दुनिया कैसी चल रही है। ये आपको बेसिक जानकारी की बात है। फिर फ्रेंड्स, आपको कुछ नक्शे में कुछ चीजों पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और देखिए, नक्शे पे तो वैसे भी आपका कमांड होना ही चाहिए, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अब बिना नक्शे के तो गुजारा नहीं है। और आप प्री का पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नक्शा आपकी कितनी मदद करता है। तो नक्शे में देखिए, केवल देश के लोकेशन आपको नहीं जानने कि अमेरिका कहां है, कैनेडा कहां है, और ब्रिटेन कहां है, और ये सीरिया कहां है। विदेश नीति को जानने के लिए आपको ग्रुप में उन्हें जानना जरूरी है। आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे, न्यूज में भी सुनेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, आपका परिचय उन टर्मिनोलॉजी से होना चाहिए, उन शब्दों के अर्थ से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि पश्चिमी यूरोप, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिमी यूरोप कहने का क्या मतलब है, मध्य एशिया तो क्या मतलब है, लैटिन अमेरिका तो क्या मतलब है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो क्या मतलब है, नाटो संगठन तो क्या मतलब है। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। तो ये कुछ ही हैं, ज्यादा नहीं है, 15-20 हैं। अगर आप 15-20 जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको जान लेंगे, समझ लेंगे, नक्शे पर लोकेट कर लेंगे, तो आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, और लगातार आप देखेंगे कि अखबारों में उनके बारे में चीजें आती भी रहती हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की किताब निकालेंगे तो उसमें ये है, आप 11th 12th की किताब में जाइए, 12th में है ये, तो उसमें अलग से इसके चैप्टर्स दिए हुए हैं और अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं फ्रेंड्स, उसमें यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, नाटो है, सार्क है, एशियन कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इसी तरह से आपके परमाणु ऊर्जा को लेकर के संगठन है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, इनके बारे में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी, संक्षिप्त मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कई कई बार संक्षिप्त जानकारी, इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कब बने, क्यों बने, इनका उद्देश्य क्या है, दैट्स ऑल। बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि इनके ऊपर नोट लिखने के लिए नहीं आएगा कि टिप्पणी लिखिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। जब आप करेंट की चीजें पढ़ेंगे, समसामयिक घटनाओं को पढ़ेंगे, तो आपकी समझ में आएगी वो चीजें कि ये क्या है, कैसे है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे अनचाहे आप देखेंगे कि आपकी जो कैपेसिटी है, जो एनालिटिकल पावर है, वो बढ़ती चली जाएगी। देखिए, एनालिटिकल पावर रटने से नहीं बढ़ती है, और एनालिटिकल पावर खूब सूचनाएं इकट्ठा करने से भी नहीं बढ़ती है, एनालिटिकल पावर बढ़ती है अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से। और समझदारी के लिए जरूरी है कि इन सब जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं उनका एक एहसास हमारे दिमाग के अंदर मौजूद हो। मित्रों, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चूंकि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो झुकाव होगा सिविल सर्विस के तहत होगा, तो हमारा सिलेबस भी यही कहता है कि चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसीज हो, फिर हमारे पड़ोसी देश हो, भारत का इनके साथ कैसा संबंध है और भारत पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो आप इसे ऐसा ही पाएंगे। तो बट नेचुरल है कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत लगातार, आप देख रहे कि भारत लगातार परेशान है इन दोनों से। परेशान क्या है, मतलब विवाद की स्थिति बनी रहती है, किसी न किसी इश्यू को लेकर के अखबारों में आप पढ़ते ही रहते हैं, तो चीन और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरे पड़ोसी देश हैं फ्रेंड्स, जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, नेपाल है, और हमारे इधर के बांग्लादेश वगैरह जो है, मालदीव है, ये जो बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र हैं, इनके साथ भी भारत के संबंध कैसे हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट उनमें क्या हो रहा है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है ये तो आपको अखबारों से हो जाएंगे, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि को आपको जानना जरूरी है, जो मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं। और इसके बाद दोस्तों की पूरी दुनिया में जो शक्ति का संतुलन है वो किस तरीके से बन रहा है, और जो वर्ल्ड लेवल की जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे पर्यावरण को लेकर के चल रही है, विश्व आतंकवाद को लेकर के चल रही है, गरीबी को लेकर के चल रही है, आप देखिए कि शरणार्थियों की प्रॉब्लम को लेकर के हम जूझ रही है दुनिया, तो ये तो लेटेस्ट में आपको मिल जाएंगी, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा बेसिक्स जानने की जरूरत नहीं होगी। तो मित्रों, अभी जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इन पर आपको अलग से तैयारी करनी होगी जो किताबों में अवेलेबल हैं, और एक बार जब आपकी इन पर तैयारी हो जाएगी तभी सच पूछिए, तो जो अखबार और मैगजीन्स में जो लेख आ रहे हैं, रेडियो और दूरदर्शन पर जो आप न्यूज सुन रहे हैं, उनका आप समुचित तरीके से फायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज जैसे कि अगर मैं अपने शरीर में खूब सारा तेल मल लूं और तेल मलने के बाद उस पर पानी डालूं तो कोई असर नहीं होगा, वही स्थिति हो जाएगी कि अगर मैंने बेसिक्स की बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है तो फिर मैं करंट अफेयर्स चाहे कितना भी पढ़ता रहूं उसका कोई बहुत असर नहीं होगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की तैयारी के बारे में डिटेल में बताया है, और अब हम आगे और दूसरे इश्यूज पर इसी तरीके से बातें करते रहेंगे। आप लोगों की और कोई जरूरत हो तो आप सब मुझे सूचित करें। फ्रेंड्स, मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, क्लिपिंग्स की संख्या बहुत कम है, लेकिन कम और अधिक महत्वपूर्ण नहीं मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम केवल उन्हें ही पढ़ें जो जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब अंतिम चरण पर मैं आता हूं उन विद्यार्थियों का स्वागत करने पर जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो मित्रों, मैं 13 ऐसे स्टूडेंट का स्वागत करने जा रहा हूं, और ये स्टूडेंट हैं शिवांगी गुप्ता आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, सहदेव सिंह नरेंद्रपुर मुरादाबाद से, धनराज सिंह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, राधे श्याम सिन्हा रेंग कथेरिया छत्तीसगढ़ से, शिशिर प्रकाश झा मधुपनी बिहार से, शाबिया आजमी काशीपुर उत्तराखंड से, मनोरंजन कुमार सीतामढ़ी बिहार से, राजश्री जांगीर नवलगढ़ राजस्थान से, आकाश तिवारी सूरत गुजरात से, लुभाना डोंगरे नागपुर महाराष्ट्र से, संध्या जयंत दिल्ली से, आलोक सिंह सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से और उमा शंकर घाटे धमतरी छत्तीसगढ़ से। आप सभी का मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।